हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुपस्थित सभी भक्तों का शुक्रवार के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं श्री श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरुदेव, गुरु परंपरा और सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपेक्षा रखता हूँ, ताकि उनके आशीर्वाद से हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए कुछ हरी चर्चा कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो दिन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण श्री कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक दामोदर का महीना, जिसको दामोदर का महीना कहते हैं, जो राधा रानी का अति प्रिय है ना, और इसको ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा मतलब ऊर्जा देवी राधा रानी को कहते हैं। तो ये नाम कार्तिक दामोदर मंथ है, लेकिन ये राधा रानी का महीना है और इसमें आप जानते हैं कि भगवान की अनेकानेक लीला हुई है। कौन सी सबसे फेमस लीला है इस कार्तिक महीने में? दामोदर लीला। और कौन सी लीला भगवान ने की है इसमें? गोवर्धन लीला। और क्या क्या पर्व इसमें आते हैं? तुलसी विवाह, बहुलाष्टमी जो कि राधा कुंड का अपियरेंस डे है, गोपाष्टमी क्योंकि भगवान कृष्ण को बड़ी गाय चराने की सेवा मिली थी। पहले छोटी छोटी गैया चराते थे, फिर बड़ी गाय चराने के लिए उनको सेवा मिली, गोपाष्टमी। और राधा कुंड अपीयरेंस डे दीपावली। या क्यों दीपावली मनाते हैं हम लोग? फटाके फोड़ने के लिए। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी उस दिन अयोध्या सीता माता के साथ वापस आए थे, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में जब अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ तो अयोध्या को पूरा सजा के रखा था। तो हमारा हृदय भी अयोध्या के जैसे है और उनको भी प्रज्वलित करना चाहिए। दीप आवली, बहुत सारे दीपों से ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। और क्या हुआ इस महीने में?
चतुर्मास का लास्ट मंथ
है। यस,
भीष्म पंचक।
यस, और भीष्म पंचक के जो पांच दिन है ये भी इस महीने में है। और क्या? शरद पूर्णिमा। यस प्रभुपाद जी, तो डिसअपीयरेंस डे। श्रीला प्रभुपाद तिरोभाव दिवस भी इसी में आता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तुलसी विवाह, और नरकासुर का वध भी भगवान ने इसी महीने में किया था। एक बहुत ही फेमस ब्रज में उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते भैया दूज, वो भी इसी में आता है, जिसमें यमुना का भाई कौन है?
यमराज।
तो यमराज और यमुना, इनकी लीलाओं के बारे में भी है कि यमराज ने यमुना में स्नान करके यमुना देवी के घर पे प्रसाद प्राप्त किया था। और ऐसी मान्यता है ब्रज में कि कोई भी व्यक्ति यमुना में स्नान करके अपने बहन के घर ऑब्वियसली हरि प्रसाद अगर ग्रहण करता है तो सीधा बैक टू गॉड हेड, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ऑब्वियसली इसमें दो एकादशी आती है, तो एक जो देवश्रेणी एकादशी होती है, आषाढ़ी एकादशी, जिसमें देव सो जाते हैं, इस कार्तिक एकादशी में उठ जाते हैं और उठने के बाद में भगवान का भव्य स्वागत किया जाता है और भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो देवता लोग भगवान की रथ यात्रा करते हैं एकादशी के दिन। तो ये दिन भी यहीं पे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये महीना है जिसके अंदर भगवान की बहुत सारी लीला, जो भी हमने आप लोगों ने कही वो और जो नहीं कही वो भी, बहुत सारी अनेकानेक लीलाएं भगवान की होते रहती है, और इसलिए कार्तिक का महीना जो है ये भगवान को अति प्रिय है, और इसमें जो कृपा प्राप्त होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में, अबंडेंस। जैसे नॉर्मल में हम लोग कुछ एक चीज करते हैं उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है, कार्तिक के महीने में बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है जो अभी शुरू होने जा रहा है, और सिद्ध गौरांग प्रभु ने मुझे कहा था, पहले आदेश दिया था क्लास के लिए 4-5 वीक के पहले, लेकिन वो पोस्टपोन होते होते जा रही थी। शायद भगवान की यही इच्छा थी कि हम लोग कार्तिक के पहले, कुछ दूसरा कुछ मुझे आता नहीं था, तो मैंने कहा चलो हम इसी पे डिस्कस करते हैं। तो 3-4 साल पहले शायद हमने दामोदर अष्टकम पे चर्चा की थी, और दामोदर अष्टकम में ज्वेल्स इन दामोदर अष्टकम, तो दामोदर जैसे दामोदर लीला तो आप सब लोग को पता है, बार बार आपने सुनी है, हर बार सुनते रहते हो 30-30 दिन हर साल। तो एग्जैक्टली दामोदर लीला नहीं, लेकिन दामोदर लीला पे ही जो अष्टकम लिखा है सत्यव्रत मुनि ने, जो पद्म पुराण में आता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन क्या है कि हमारा जो कलयुग के जीव है, तो बहुत सारी चीजें हमारे को याद रहती नहीं है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। एक बार गौरांग प्रभु ये बात बता रहे थे कि स्टार टीवी पे आत्मा सीरियल में उनके कुछ एपिसोड रिकॉर्ड किए गए थे, तो ITV ने किए थे वो, तो जब रिकॉर्डिंग किया था तो पूरा एक साल का रिकॉर्डिंग पूरा एक साथ कर लिया था, और वो स्टार टीवी को दे दिया था, आई थिंक हरिदास प्रभु थे, उन्होंने दे दिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, और वो हर हफ्ते या जो भी उनका टाइम था उसमें उस एपिसोड को चलाते थे, जिसमें गौरांग प्रभु, सार्वभौम प्रभु, हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज इत्यादि वगैरह सब क्लास देते थे। तो बहुत सारे लोग गौरांग प्रभु को उस स्टार टीवी की वजह से जानने लगे कि अरे ये व्यक्ति है। तो कभी कोई व्यक्ति राधा गोपीनाथ मंदिर में आ जाता और कहीं गौरांग प्रभु नॉर्मल ब्रह्मचारी की तरफ बैठ के माला झोली हाथ में लेके जप करते, तो ये वही है वो जो स्टार में बोलते हैं ना, टीवी पे आना किसी किसी का ख्वाब होता है, वो प्रीच कर रहे थे। तो बाद में क्या हुआ, एक साल के एपिसोड दिए उन्होंने, एक साल खत्म हो गया, तो स्टार टीवी ने दूसरे साल भी सेम एपिसोड रिपीट करने शुरू कर दिए, और कोई आके गौरांग प्रभु से कहता है कि प्रभु जी इस साल वाले आपके लेक्चर्स, वाह क्या जोरदार लेक्चर्स है। गौरांग प्रभु ने बोला सेम है, लास्ट टाइम के लेक्चर है। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आप सुनते नहीं हो, आप खाली इतनी जगह बोलते रहते हो, आप भूल जाते हो, इस बार का आपका लेक्चर बहुत अच्छा है। तो बोले हम कलयुग के जीव है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपत्यका, भागवत हमारी आत्मकथा बताता है। तो हम लोग भूल जाते हैं बार बार, तो रिमाइंड करना पड़ता है हमको कि हाँ नहीं, वापिस से हम उसको सुनते हैं, और रिपीटेशन मेक्स द तत्व वेरी परफेक्ट, तो समझ में आ जाता है। तो इसके लिए कभी कभी प्रीचर का काम भी आसान हो जाता है। तो एनीवे हमने सोचा कि वापस से हम लोग ये करते हैं, और क्योंकि ये जो महीना है कार्तिक का, जैसे देखो कोई भी त्योहार है, इस्कॉन में आने के बाद आपको समझ में आता रहेगा कि उसको मनाने का, उत्सव मनाने का जो एक तरीका है और जो एक विधि है, और सबसे बड़ा जो एक भाव है, मूड जो है वो चेंज हो जाता है बहुत बार। जैसे मैं भी बोल रहा था दिवाली लोग क्यों मनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखो दिवाली में क्या क्या करते हैं, आप लोग बताओ दिवाली में ट्रेडिशनली लोग क्या करते आए हैं, पटाखा फोड़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मतलब हमारे टाइम जब मैं छोटा था मुझे याद है दिवाली मतलब नए कपड़े खरीदने, मतलब खुशी की एक ही बात होती थी कि दिवाली आ रही है, मतलब एक पैंट नया शर्ट मिलेगा अपने को, नए कपड़े खरीदने हैं, मिठाइयां खाने को मिलेगी, अलग अलग घरों में जाके, तभी इतनी अक्कल नहीं थी लेकिन जा जाके लोगों के पैर छूते थे ताकि कुछ पैसे मिले। तो एक इस तरह का कंसेप्ट था, अच्छा था, लोग मतलब यू नो एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं। फिर कुछ घरों में साफ सफाई और कलरिंग, यू नो जिसके घर में पेंटिंग चूना उना सब वो सब चालू हो जाता था, तो वो सारी चीज हम करते आए हैं। लेकिन ये जो चीज है, तो ऐसे दो पहलू होते हैं कोई भी त्योहार के, एक होता है सांस्कृतिक पहलू, ट्रेडिशनल पहलू जो भी है, या एक आप बोल सकते हो कि आध्यात्मिक पहलू है, स्पिरिचुअल। जैसे कुछ चीज ट्रेडिशनल है, कुछ चीज ट्रेडिशनल नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल क्या है, दीप जलाना, ये मतलब इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में आए हैं, हमारा हृदय भी हमारा खराब घर की तरह है, उसको साफ करना है, भगवान को इनवाइट करना है। तो ये एकदम ट्रेडिशनल है और कुछ चीज नॉन ट्रेडिशनल है, जैसे फटाके फोड़ना। ये फटाके फोड़ने का कोई कंसेप्ट था नहीं, किसी ने बना दिया, किसी का बिजनेस चल रहा है और इसमें किसी को खुशी होती है तो किसी को दुख भी होता है। कोई कान बंद कर लेते हैं, किसी को सफोकेशन होता है, किसी कोई जल जाता है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है, किसी को आवाज से प्रॉब्लम होता है फटाके फोड़ने के लिए, और किसी को मजा आता है। तो ये दो चीज है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो एक और तीसरा तत्व जो इसके अंदर ऐड किया वो है डिवोशन, भक्ति, भक्तिमय, मतलब सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भक्तिमय, ये तीनों का मिश्रण करके। और प्रभुपाद जी ने हमारे सामने हर एक फेस्टिवल को प्रेजेंट किया कि कार्तिक महीना मतलब क्या, हमको क्या करना है, मेन दिवाली मतलब कैसे मनानी है हमको। अभी होली हम कलर फेंक फेंक के मनाते थे, लेकिन यहाँ पर इस्कॉन में देखते हैं कि खाली भगवान पे कलर फेंकते हैं, हमारे पे फेंकते ही नहीं है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है, ये सारा कंसेप्ट जो है हमको प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो जैसे हम बोलते हैं कि रिचुअल एक वर्ड है, उस रिचुअल के आगे अगर आप SPI, SP मतलब प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, और I मतलब इस्कॉन, अगर रिचुअल के आगे SPI लगाएंगे तो क्या होएगा, स्पिरिचुअल। सो प्रभुपाद हैज मेड ऑल ओवर रिचुअल्स इनटू स्पिरिचुअल। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमें जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित ये दामोदर अष्टकम है, जिसमें 8 अष्टकम के रूप में उन्होंने पूरी दामोदर लीला और उसके भाव को दर्शाया है, उसको हम गाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले एक और चीज मैं बताता हूँ कि ये दामोदर लीला इतनी इतनी मनोहर लीला है, इतनी उत्कृष्ट लीला है कि देखो, हम लोग इस्कॉन में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, अभी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो जन्माष्टमी मनाते हैं कितने दिन के लिए, कभी कभी शायद 3 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, जैसे टेंपल को प्रीचिंग करना है, पंडाल बनाएंगे, 7 दिन का लेक्चर चलेगा तो वो होगा। फिर उसके बाद राधाअष्टमी ज्यादातर 1 दिन, गौर पूर्णिमा अगेन 1 day to 3 days या जो भी है, रामनवमी भी वैसे ही, नरसिंह चतुर्दशी वैसे ही, लेकिन ये एक अकेला ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम 30 दिन मनाते हैं, पूरा होल मंथ इज डेडिकेटेड फॉर लॉर्ड दामोदर। मतलब सोचो कितना फेमस है ये और कितना मधुर है, और भक्त लोग लगे रहते हैं इसकी सेवा करने के लिए, दौड़े 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 सब जगह अपना काम काज खत्म किया और जाके हर घर के अंदर। सोचो प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पर इस देश में भी कितने घरों में हम जाके दामोदर आरती करते हैं। आप देखो दुबई में लास्ट टाइम 5,000 से ज्यादा घर कवर किए थे और यहाँ पे करीबन 1,000 से ज्यादा, तो इतना मतलब ये फेस्टिवल मना रहे हैं, क्योंकि इस दामोदर लीला में भगवान ने, दामोदर लीला में भगवान ने अपने 5 रसों का आस्वादन किया है। हाँ, आप लोगों को 5 रस कौन कौन से पता है, जरा फटाफट बोलिए हाथ उठा के। शांत रस, भक्ति वैभवदान। सो ये जो 5 रस है जिन्होंने सुना नहीं, मैं बताता हूँ। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इन 5 रसों का एक साथ एक समय एक जगह पे भगवान ने आस्वादन किया दामोदर लीला में। हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे 5 के 5 रस, या जैसे शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले भगवान ने, जैसे इस दामोदर लीला में हीरो कौन है, कृष्णा तो है साइड हीरो है, यशोदा मैया, यशोदा मैया इज द हीरो ऑफ द दामोदर लीला। कृष्ण भी डेफिनेटली है, लेकिन वात्सल्य रस जो है इस दामोदर लीला में प्रधान है। तो वात्सल्य रस किसने प्रदर्शित किया, यशोदा मैया ने। शांत रस किसने प्रदर्शित किया, हाँ बोलिए बोलिए, यस, वन इज ओखली द मॉटर, सेकेंड इज ट्रीज ऑल्सो, उन्होंने शांत रस में भगवान का साथ दिया। साख्य रस में मंकीज इज द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली गोपाज ऑल्सो, बलराम जी ऑल्सो। सर जैसे बलराम जी जब कृष्ण को बंधा हुआ देख लिया तो जाके मैया यशोदा को बोला, पहले बोला कौन बांधा तेरे को बता, जाके बोला कि माँ ने बांधा है, तो माँ को जाके बोला मैया तूने कृष्ण को बांध दिया, तू जानती है कृष्ण कौन है, तो यशोदा बोली कौन है, बोला ही इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे सर्व कारणों के कारण है वही है भगवान श्री कृष्ण। तो मैया ने अच्छा तू कौन है? तो बोला रे मैं बलराम हूं, मैं कृष्ण का पहला विस्तार हूँ, पहला एक्सपेंशन हूँ, और सारे के सारे जो बाकी देवता जो विष्णु के अवतार है और बाकी सारे अवतार जो है वो मुझसे ही आते हैं, और सारे के सारे अवतारों का श्रोत्र मैं हूँ। तो मैया ने छड़ी उठाई, बोला अच्छा सारे अवतारों को क्या मेरे घर में जन्म लेना था? तो भाग इधर से, तो तेरे को ही बांध दूंगी वो बेचारा। तो नहीं, बलराम जी ऑल्सो साख्य भाव में थे भगवान के, तो शांत साख्य। तीसरा दास्य भाव, दास्य भाव में कौन था, कौन बताएगा? अरे हनुमान जी तो और वाले दामोदर लीला में हनुमान जी किधर है? है वो भगवान के हमेशा साथ में रहते हैं। लक्ष्मी किधर है? किसने देखा दामोदर लीला में लक्ष्मी को? एक्चुअली दाम शांत भाव में है, दाम का जो एग्जांपल है वो शांत रस में है। यस गोपी प्रभु गो, अच्छा रस्सी बोला आपने। नल कुबेर और मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव वो दास्य भाव में भगवान के दास के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। और माधुर्य, माधुर्य लीला दामोदर लीला में माधुर्य रस कहां पर है? वो दामोदर लीला के पहले है, नहीं उसके बीच में भी है, लेकिन राधा रानी डेफिनेटली। राधा दामोदर नाम उसी लिए आया है क्योंकि राधा रानी है, और राधा रानी का ये मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो, कि राधा रानी कहां पर दामोदर लीला में है अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बट ये पॉइंट मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो। एनीवे, तो भगवान ने अपने पांचों रसों का आस्वादन एक समय, नहीं तो क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करने का साहस भी करेगा, आप ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर कोई व्यक्ति साहस भी करने की कोशिश करेगा पांच रसों का आस्वादन करने के लिए तो मात खा जाएगा, है ना। जैसे केवल भगवान है जो वात्सल्य रस और माधुर्य रस दोनों को बैलेंस कर सकते हैं एक ही समय। अभी कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं तो वो लोग समझ पाएंगे कि आप लोग अगर अपने घर में वात्सल्य रस के प्रति अगर ज्यादा जाएंगे तो माधुर्य रस में गड़बड़ हो जाता है, और माधुर्य रस में अगर आप थोड़ा और ध्यान देने की करोगे तो वात्सल्य रस गड़बड़ हो जाता है क्या? नहीं, काफी लोग मुस्कुरा रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस है। तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि भगवान ही एक ऐसी पर्सनालिटी, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भगवान नरसिंह के रूप में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जो कोई नहीं कर सकता है। जैसे देखो आपको अगर गुस्सा आता है तो गुस्से में आप प्रेम नहीं दिखा सकते, गुस्सा एक अलग भाव है, प्रेम एक अलग भाव है, लेकिन नरसिंह भगवान ने एक ही समय गुस्सा भी दिखाया और प्रेम भी दिखाया। ऐसा कहते हैं कि जब वो गुस्सा हुए थे हिरण्यकश्यप पे तो उनकी एक आंख एकदम लाल लाल आग बबूले की तरह धधक रही थी, और दूसरी आंख से जब वो प्रहलाद को देख रहे थे तो एकदम शीतलता प्रदान कर रही थी। सोचो ये दोनों एक ही, आप कोई कर सकते हैं क्या? एक आप लोग ट्राई करके देखो, आपके दोनों आंखों में दो मनोभाव ला सकते, दो भाव ला सकते हैं क्या? नहीं। या तो हम गुस्सा होंगे तो आंखों से पता चल जाएगा, प्रेम होगा तो भी आंखों से पता चल जाएगा, आंखें सब कुछ बता देती है कि नहीं। तो भगवान एक साथ मैनेज किए, बाकी हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है, एक रस को मैनेज करने जाएंगे दूसरे रस में रसाभास हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा दूसरी कोई लीला आपको याद है जिसमें पांचों रसों का आस्वादन भगवान ने एक साथ किया हो? परफेक्ट, गोवर्धन लीला और एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने पांचों रसों का आस्वादन, अभी उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो ऐसा है कि एक टॉपिक बोलने के साथ साथ कहीं और चले जाएंगे, तो आई विल कम बैक। तो भगवान ने पांचों रसों का आस्वादन किया और अपने पांचों विशेषताओं को इसमें प्रदर्शित किया, जैसे मधुरता, महानता, ममता, दीन वत्सलता और भक्त व्यवहारिता। ये सारी चीजें जो भगवान के, और भगवान के ना इसमें स्पेशल फीचर्स है, जैसे भगवान के गुण विशेष, एक विशेष भगवान के फीचर्स इस दामोदर लीला में आते हैं उभर के, गुण विशेष, तत्व विशेष, सौंदर्य विशेष, लीला विशेष, प्रेम भक्ति विशेष और कृपा विशेष। मतलब भगवान के ये सब एस्पेक्ट है, कृपा का एस्पेक्ट ये भगवान ने यहाँ पर बताया प्रेम भक्ति जो है वो भगवान ने दामोदर लीला में दिया है। लीला ऑब्वियसली भगवान अपनी लीला यहाँ पे कर रहे हैं। सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ है दामोदर लीला में, कौन से वर्ष में हुआ है? ऑलमोस्ट ऑल वर्सेस एक्चुअली जिसमें भगवान की सुंदरता के बारे में बताया है, बट दो तीन वर्सेस में लसत कुंडलम और ये सब के अंदर बहुत अच्छी तरह से सच्चिदानंद रूपम भगवान के सौंदर्य का वर्णन हुआ है, भगवान के तत्व का वर्णन हुआ है दामोदर लीला में, भगवान के तत्व का वर्णन हुआ है। पहला वर्ड तत्व है नमामि ईश्वरम। तो ये लीला जो है ये ऑर्डिनरी लीला नहीं है, क्योंकि इस लीला के अंदर भगवान ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं कि जैसे भगवान सो रहे थे, उठ के आए, फिर उन्होंने यशोदा का दुग्ध पान करना शुरू किया, उसके बाद में उसने उसको नीचे छोड़ दिया, गुस्सा हो गए, मटका फोड़ा और भगवान को दंडित करने के लिए यशोदा आई, तो भगवान आगे आगे भागने लगे, यशोदा पीछे पीछे भागने लगी, फिर भगवान रोने लगे। तो ऐसा सब देख के कोई सोचेगा यार बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था, मेरी माँ भी मेरे पीछे पीछे भागती थी, मैं भी रोता था, कहीं मेरे बारे में तो नहीं है। तो पहले सत्यव्रत मुनि बोल दिए कि नहीं भी, नमामि ईश्वरम, ये ईश्वर की चर्चा हो रही है, ये किसी ऑर्डिनरी नहीं। तो ईश्वर का नाम सुन के बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे, कोई बोलेगा मेरा नाम भी ईश्वर है, साउथ इंडिया में बहुत नाम रहते हैं ईश्वर, मेरा सरनेम भी ईश्वर है, तो बोले नहीं सच्चिदानंद रूपम, ये कृष्ण के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो तत्व के बारे में और भगवान के गुणों के बारे में इसमें बताया। तो आइए हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फर्स्ट वर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 104 नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्।
यशोदाभियोलुकलाधवमानम् अत्यन्ततो
दुःखगोप्या। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है और जो दधि भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो पहला वर्ष है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या कहा, तत्व विशेष इसमें आया है कि भगवान के तत्व के बारे में बताया, क्योंकि क्या है कि भगवान का पावर और भगवान की पोटेंसी को समझे बिना अगर भगवान के पास टाइम पे कोई जंप मारता है तो मात खा जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए थे, ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये कैसी लीला कर रहा है, भगवान जब लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी चार सिर जिनके हैं और पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है, वो भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कृष्ण बैठे हुए हैं। यानी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर हमारा सब्जेक्ट से, लेकिन किस तरह से वो झूठा खा रहे हैं अपने मित्रों का, और जब वो मधुमंगल के मुंह का छास उनके मुंह में आया कृष्ण के, तब उन्होंने बोला छी 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 बहुत हो गया, अभी इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, ये कृष्ण ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसा है किसी दूसरे के मुंह में गिरा हुआ उच्छिष्ट उन्होंने अपने मुंह में लिया, खा लिया, नहीं मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी ने क्या किए, बछड़े और ग्वालों को छुपा दिया। एक साल बीत गया और यहाँ पर फिर कृष्ण अपनी लीला कर रहे थे, बाद में उनको समझ में आया कि अरे ये तो मैंने कितना बड़ा गलती किया, और भगवान ने अपना वैसा विस्तार किया, वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाले एक साल तक लीला करते रहे, और ब्रह्मा जी को लगा क्या उत्पात मचाया मैंने, देख के आता हूँ, और देखे तो चारों सिर उनके चकराने लगे, क्योंकि इधर गुफा में भी बछड़े और ग्वाले हैं, इधर भी बछड़े और ग्वाले हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल ये है कि ओरिजिनल ये है, वहां भी कंफ्यूज हो गए वो, एकदम आइडेंटिकल, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर देना, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, तुम्हारे बारे में इतना कुछ समझने के बाद केवल मैं एक चीज समझा हूँ, एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, बहुत डिफिकल्ट है। और फिर एनीवे फिर ब्रह्मा जी अपने बहुत सारे भाव प्रकट करते हैं, और एक मतलब एक भाव तो उनका इस तरह से भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं क्यों नहीं विचलित होऊंगा आपसे, आप काम ही ऐसा करते हो, कृष्ण की काम ऐसे हैं जिससे हमारे हम लोग विचलित हो ही जाएंगे एक्चुअली, यू नो, इसीलिए कृष्ण ने जो किया वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। भगवान राम ने जो किया वो अनुकरणीय है, भगवान राम ने जो भी किया हम लोग कर सकते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना है, क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज अगर कृष्ण का कोई फॉलो करने जाएगा तो बोलते हैं कि एनीवे। तो तत्व विशेष के बारे में यहाँ पर ब्रह्म ये बताते हैं, तो कहते हैं कि नमामि ईश्वरम, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं उस ईश्वर को। तो इस दामोदर लीला के अंदर आगे हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे हर शब्द के पीछे ईश्वर लगाना मत भूलना, ये सत्यव्रत मुनि हमको समझा रहे हैं। और सनातन गोस्वामी दिग्दर्शिनी टीका में लिखते हैं कि हर एक वर्ड के पीछे ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है, नमामि ईश्वरम, सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम, लसत कुंडलम ईश्वरम, गोकुले भ्रजमानम ईश्वरम, क्योंकि ये ईश्वर की चर्चा हो रही है। थोड़ा आगे जाने के बाद रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, रो रहा है ये, हो रहा है डर के मारे, यू नो, तो जिससे मूर्तिमान भय भयभीत होता है वो किसी से भयभीत हो सकता है क्या? तो ये जो भयभीत होता हुआ लड़का है, हाँ, ये जो बालक है, ये जो भाग रहा है और इस तरह की लीला कर रहा है, तो ये मत भूलना कि ईश्वर है। हाँ, और वो लसत मतलब पहले सबसे इंपॉर्टेंट नमामि ईश्वरम, तो बेसिकली उस ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसका रूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपम। तो कोई भी व्यक्ति अपने रूप से छल नहीं कर सकता। हाँ, भगवान का रूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान हमारे जैसे ऑर्डिनरी नहीं है, ये उन ईश्वर की बात हो रही है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या है कि अपना हाथ खड़ा करके बोलते हैं मैं ईश्वर है। जैसे एक बार गौरांग प्रभु अपने क्लास में बोल रहे थे दैट देयर इज वन पर्सन हु इज वेरी बल्की, कॉल्स हिम टू बी ए कल्की। तो एक वो साउथ इंडिया में कोई एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने अपने आप को कल्की भगवान घोषित कर दिया। या कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। तो सच्चिदानंद रूपम, तो दो तरह के गुण होते हैं, एक होता है प्राइमरी गुण और एक होता है सेकेंडरी गुण। तो प्राइमरी गुण भगवान का क्या है, सच्चिदानंद रूप है उनका, और सेकेंडरी गुणों का वर्णन करते हुए अभी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, और कहते हैं लसत कुंडलम। अभी ये लसत कुंडलम कहने की क्या जरूरत थी, मतलब ऐसा बीच में जैसे अगर समझो कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उसके चेहरे पे, हा? कि वो क्या बोल रहा है, या कभी कभी उसकी आंखों पे, लेकिन कान पे कौन देखता है, कौन जाके कान को देखेगा, अरे क्या हो? तो कान पे क्यों फोकस कर रहे हैं उसके? तो बताना चाहते हैं कि देखो जनरली जो व्यक्ति की सुंदरता है वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, ज्वेलरी, व्हाई ज्वेलरी इज यूज्ड, सो दैट वी बिकम मोर ब्यूटीफुल, वी लुक मोर ब्यूटीफुल, बिकम का तो मालूम नहीं, बट वी मोर लुक मोर ब्यूटीफुल। और ऐसा तो अपने रूप सौंदर्य को वर्धन करने के लिए लोग आभूषणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कृष्ण जब आभूषण धारण करते हैं तो कृष्ण उस आभूषण को धारण करके सुंदर नहीं बनते हैं, लेकिन वो आभूषण जो है वो कृष्ण के संपर्क में आके और सुंदर बन जाता है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति ने किसी कुंडल को धारण किया है तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कितना अच्छा कुंडल, कहां से लिया, मालाबार से या दामास से? तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर जब कृष्ण ने कोई कुंडल धारण किया है तो कोई व्यक्ति कृष्ण को जाके नहीं पूछता ये कुंडल कहां से लेके आए, लेकिन वो जाके कुंडल को कहता है कि यार कुंडल कितना सौभाग्यशाली है तू, क्या कान धारण किया है तूने। कोई कान को जाके बोलेगा कुंडल धारण किया है, लेकिन यहां पर कुंडल को जाके बोलते हैं कि यार तू गया तो भी कौन से कान में, कृष्ण के कान में। सोचो तो यदा कदा किसी प्रकार से जीव अगर भगवान से जुड़ जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो यहां पर कृष्ण के कान में आने से उस कुंडल का जीवन सफल हो गया, और सत्यव्रत मुनि ने उसको स्क्रिप्चर में लिख दिया लसत कुंडलम। सोचो तो समझ में आ रहा है ना कि हमारा जो जीवन है ये बेकार है, हमारे जीवन का कोई इतना मूल्य नहीं है, लेकिन अगर हम कृष्ण से यदा कदा येन केन प्रकारेण कैसे भी जुड़ जाए तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। तो ये जो हमारे आचार्य है, जैसे सत्यव्रत मुनि ने इतने, क्योंकि आठ 8 स्टेंजर्स के अंदर लीला लिखनी थी, तो बहुत बहुत ध्यान रख रख करके उन्होंने एक एक वर्ड को लिखा है। ये लसत कुंडलम ऐसे नहीं लिखा उन्होंने। और वो लिखने के बाद में उनके ऊपर जो हमारे दूसरे आचार्य है ना, उन लोगों ने तहकीकात की है। तहकीकात मतलब समझते हैं, डिटेक्टिव, दे आर लाइक डिटेक्टिव, एक एक चीज को डिटेक्ट किया है कि भाई ऐसा लिखा तो ऐसा क्यों लिखा है। और फोकस करते करते जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, सनातन गोस्वामी, हरिसूरी जी, इन सब लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर ये जो कथा की है। और डिटेक्टिव का काम क्या होता है कि जैसे डिटेक्टिव ना नॉर्मल तरह से नहीं सोचता है। जैसे हम लोग समझो देखेंगे लसत कुंडलम तो ऐसा क्या भगवान के कान में झूम रहे हैं, लेकिन आचार्य जो है वो और उसके आगे जाते हैं। और जैसे डिटेक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर कोई सीरियल वगैरह देखे रहेंगे पहले, गाजर खाने वालों का, या फिर यू नो डिटेक्टिव वाले बहुत सारे सीरियल वो सीरियल अगर आप लोगों ने देखे रहेंगे तो वो नॉर्मल कार्य नहीं करते हैं। किसी का खून हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। अच्छा, ये दामोदर लीला भी एक क्राइम सीन है कि नहीं? दामोदर लीला इज ऑल्सो क्राइम सीन। कृष्णा ने अपराध किया है, क्या अपराध किया है, मटका फोड़ा है, माखन चुराया है और इतना उत्पात मचाया है, तो ये भी क्राइम सीन है। तो हमारे आचार्य लोग उधर पहुंच गए अपना डिटेक्टिव ग्लास लेके कि देखो क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो पूरा एकदम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे नॉर्मल डिटेक्टिव जाएगा किसी का मर्डर हुआ है तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करेगा जो सबसे अलग है। या जैसे समझो बाल बाल पड़ा एक नीचे, कई लोगों को तो दिखाई भी नहीं देगा, पर वो ढूंढेगा उस बाल को, फिर वो बाल उठा के देखेगा ये बाल काला है या सफेद है, और अगर सफेद है तो डाई किया है या नहीं किया है। फिर उस एक को उठा के लेके जाएगा, उसकी जांच करेगा, उसको फॉरेंसिक में लेके जाएगा, उसका केमिकल टेस्ट करेगा और पता चलेगा कि ये डाई का प्रयोग हुआ है, फिर पता चलेगा ये डाई कौन बनाता है उसके पास जाएगा, फिर उस दुकान में कहां पे डाई बेची गई वहां पर जाएगा और बोलेगा अभी मेरे को लिस्ट दो पिछले एक महीने में कितने लोगों ने डाई खरीदी है, किस किस, और वहां से जाके वो लिंक बिठाएगा। और इस तरह से डिटेक्टिव, तो हमारे आचार्य भी डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं और एकदम डिटेल में जा जाके और पता लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है। स्विंगिंग ईयर रिंग, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है कि भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान का यहाँ पे स्वीटनेस जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, और वो बता रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा था। कि जैसे अगर आप लोग भी सोचो कि क्या प्रभु जी अभी तो नमामि ईश्वरम लसत कुंडलम पे बैठे हुए हैं, टाइम तो पूरा हो गया क्लास का, तो इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, तो वो बताना चाहते हैं कि कृष्ण के जो मकराकृत कुंडल जो हिल रहे हैं वो क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि अभी कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं। क्या बताना चाहते हैं कि कृष्ण अभी वैसे नहीं रहे पहले जो से छोटे थे, कि उन्होंने क्या किया देखो, बाकी सारे काम जो कृष्ण ने ना कैसे किए थे, पुतना को मारा सोते सोते, सक्टासुर को मारा सोते सोते, त्रिनावर्त के लिए भी कुछ भागम भागी करने की जरूरत नहीं पड़ी, कृष्ण उसके ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर माटी भी खाई धीरे से बैठ गए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, अभी बहुत सारा चल रहा है। तो बताने की कोशिश करें कि कृष्ण बड़े हो गए हैं, उतने बड़े हुए हैं कि वो बहुत उत्पात कर सकते हैं। तो मतलब इतना डिटेल में जा जाके और बोल रहे हैं और कहते हैं कि भगवान अभी छोटे नहीं रहे हैं और भगवान के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये मकराकृत कुंडल जो हिल रहे हैं ये भगवान के भी मूवमेंट्स बता रहे हैं कि कैसे भगवान यू नो अपने मूव कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो डीमन आए थे उन लोगों ने कृष्ण को पकड़ा था, यहां पर कृष्ण जाके यशोदा को पकड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मंथानी को रोक दिया उन्होंने, जैसे यू नो सुखदेव गोस्वामी जब इस लीला को बोलना शुरू करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बताते हैं, एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंतम स्यतम स्वयं दधि। तो बोले स्वयं दधि वो कर रहे हैं, तो उन्होंने मंथानी को जाके पकड़ लिया। अभी सोचो उस मंथानी को पकड़ना कितना डेंजरस था, कृष्ण की उम्र उस समय 2-2.5 साल की थी केवल, और जब मंथानी वो यशोदा उसको जब दही बिलो रही थी तो घर 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 की जो आवाज आ रही थी बहुत स्पीड में चल रहा था, वो जो मंथन हो रहा था वो बहुत स्पीड में, और उस मंथन के अंदर अगर कोई जाके हाथ डाले वो भी छोटा बच्चा तो कितना डेंजर है उसके लिए। लेकिन सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि कृष्ण छोटे नहीं रहे, कृष्ण बड़े हो गए। तो उन्होंने क्या किया, वो जाके मंथानी को पकड़ लिया। सोचो कोई व्यक्ति अगर मंथानी को पकड़ेगा एक बार तो झटका खा के पीछे आ जाएगा, अगर बड़ा आदमी भी है तो, है ना, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, इतना इजी नहीं है कि वो उधर घर्षण चल रहा है और उसके बीच में हाथ डाल दिया, कृष्ण ने हाथ डाल के उसको पकड़ लिया और बोला मैया रुक, ये क्या लगी हुई है माखन बनाने के लिए, मुझे भूख लगी है, मुझे अपना दूध पिला। तो सोचो कितना डिटेल है इसके अंदर, आचार्य लोग कहां कहां पे जाके क्या क्या हमको बता रहे हैं कि इस तरह से कह रहे हैं लसत कुंडलम गोकुले भजमानम, कि भगवान जो ये जो गोकुलवासी भी है, ये यशोदा एकदम साधारण ब्रजवासी लगती है, लेकिन इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है कि भगवान के साथ इस प्रकार की लीला करने के लिए उनको मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि बंदरों के साथ भगवान इस तरह की लीला कर रहे हैं और नंद बाबा के साथ इस तरह की लीला कर रहे हैं, तो स्वतः ब्रह्मा जी के मुंह से उद्गार फूट पड़ते हैं और कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहके अरे क्या मतलब कितना भाग्य है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोकसाम, इस नंद और इन गोप का, ये जो गोकुल ब्राजमानम है, इनका क्या सौभाग्य है। यन मित्रम, अरे मित्र बना के रखे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। अब सोचो यही बंदर जो थे, साक्ष्य भाव का मैं आपको प्रदर्शन बताता हूं कि ये जो मंकीज थे कौन थे, यू ऑल नो, रामलीला के अंदर सारे जो बंदर आए थे, वो बंदर कोई आके राम जी के कंधे पे हाथ नहीं रखा, सब दास्य भाव में थे वहां पर, उनको भगवान ने प्रमोट किया। आपने एक भी कथा नहीं सुनी रही कि रामचंद्र जी गए अपने हाथ से और सबके मुंह में निवाला दे रहे हैं, भगवान राम ने किसी को अपने हाथ से कुछ नहीं खिलाया, हालांकि सबको अपने साथ में रखा, इतनी वानर सेना तो, लेकिन वो जो दास्य भाव में बंदर थे, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको प्रमोट किया, दास्य भाव से साख्य भाव में लेके आए, समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि दास्य जो है वो नलकुवे मणिग्रेव है, मंकीज आर इन साख्य भाव, सो मंकीज बंदर जो है वो साख्य भाव में आए और साख्य भाव में आके और उनके साथ लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन के साथ में ये बंदर लोग ऐसी लीला कर रहे हैं, क्या भाग्य है इनका, क्या भाग्य है। कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी। सोचो ब्रह्मा जी हमारे लाइनेज के अंदर सबसे टॉप पे है, तो सोचो हमको सोचना चाहिए कि हमारे जो सबसे फॉरमोस्ट आचार्य है वो इतनी बंदरों के बारे में बोल रहे हैं। और ये नंद तो गोकुल भज मानम, फिर यशोदा भियोलुक, अभी सबसे पहले तो यशोदा ये जो शब्द है इसकी व्याख्या करने में एक घंटा लग जा रहा है, अगर कोई डिटेल में जाना चाहे कि यशोदा वो है कि जो भगवान के यश को बढ़ाती है। यशोदा और यशोदा का कितना भाग्य होगा, सोचो प्रभु जी ने मुझसे पूछा था, कभी और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये दामोदर लीला इज व्हाट, दामोदर लीला इज द आंसर ऑफ परीक्षित क्वेश्चन टू सुखदेव गोस्वामी के, अरे इन्होंने क्या क्या किया था ऐसा कि भगवान इनके साथ ऐसी लीला करने आए। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना सौभाग्य है इस नंद का और यशोदा का कि भगवान उनके साथ में ऐसी लीला कर रहे हैं। तो उसको बताने के लिए दामोदर लीला सुनाई और कहा कि कैसे धरा और द्रोण जो थे उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की थी और तब जाके भगवान ने उनका ये वात्सल्य प्रेम जो है वो स्वीकार किया था। तो यशोदा भियोलुक, भियोलुक का मतलब होता है डर गए, किससे, यशोदा से। अभी भगवान जो है तत्व ज्ञान क्या है, नमामि ईश्वरम, ईश्वर कभी डरता है क्या, ईश्वर कभी डरता है, ईश्वर कभी रोता है, ईश्वर को कभी आतंक होता है, नहीं। ये सारे जो उनके जो एट्रीब्यूट्स है भगवान ने धराशायी कर दिए दामोदर लीला के अंदर। भगवान क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, अरे जिससे मूर्तिमान भय, उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युर नमाम्य, जिनसे मृत्यु डरती है वो नरसिंह भगवान, वो भगवान क्या कर रहे हैं, एक साधारण गोपी से डर के भाग रहे। यशोदा भियोलुक लाधव, भाग रहे हैं धावम, और वो भी क्या है कि परामृतम अत्यंत दृत्य गोपिया, पर वो गोपी ने क्या किया, भाग के और कृष्ण को पकड़ लिया। देखो कृष्ण का एक नाम है रणछोड़, रणछोड़ में भगवान, जैसे दूसरा अगर कोई रण छोड़ के भागेगा तो कायर माना जाएगा, लेकिन भगवान अगर रण छोड़ते तो उसको रणछोड़ राय बोलते हैं। तो भगवान इतना स्पीड से भागे कि कोई उनको पकड़ नहीं, एक्चुअली भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता, अपने मन की गति से भी अगर मुनि देवता देवी वगैरह सब प्रयास करते हैं उनको पकड़ने का, तो कोई नहीं पकड़ पाता। लेकिन एक साधारण गोपी ने भाग के और भगवान को हरा दिया और पकड़ लिया। ऑब्वियसली पकड़ा मतलब भगवान को हराया, वो उससे आगे निकल गई। तो भगवान यहाँ पर एक और सिद्धांत बताना चाहते हैं कि भक्ति इज आर्ट ऑफ बीइंग डिफीटेड। भक्त अगर अपने मन में ऐसी धारणा लेके पैदा होगा, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पूरा शैक्षणिक पूरा जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये कैसे पढ़ाया जाता है, इसमें बताया जाता है कि यू हैव टू कम फर्स्ट, आपको नंबर वन आना है, फर्स्ट रैंक मिलना चाहिए। किसी का थोड़ा कम रैंक आ गया तो बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया में इस तरह से हमको शिक्षा प्रणाली में बताया है कि भागो तो भागो, ऐसा भागो कि नंबर वन आओ। कोई पीछे दिखे तो भी ऐसा डर लगता है कि आगे नहीं बढ़ जाए, और लोग सोचते हैं कि सबको पटक कर हमको सबसे आगे बढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया का तरीका ही ऐसा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को हारना है। एक टीम जीत रही है तो दूसरी टीम हार रही है, तो ये द्वंद्व जो है इस समाज में चलते रहता है। और जीतने की सब इच्छा रख के और आते हैं, लेकिन भक्ति के अंदर जब हम आए हैं और ये इच्छा फिर भी रहेगी कि उसको नीचे पटकना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो भगवान कभी हमारे बंधन में नहीं आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि पराजय, भक्ति का अर्थ है पराजय। आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे, भक्ति का अर्थ है
पराजय।
भक्ति इज आर्ट ऑफ बीइंग डिफीटेड। तो भगवान इधर हार के खुश हो रहे हैं, है क्या नहीं? तो कॉम्पिटिशन, स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन समटाइम्स इज गुड, बट नॉट यू नो अननेसेसरी कॉम्पिटिशन। इसके लिए एक्चुअली जैसे एकलव्य वो अर्जुन से कॉम्पिटिशन करना चाहता था, यानी वो एक अलग स्टोरी है। सो परामृतम अत्यंत तो धृत्य गोपिया, उस गोपी ने भाग के और कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण को हरा दिया, और कृष्ण उस हार के अंदर भी बहुत खुश है। तो दूसरी जो गोपियां है उससे कृष्ण डरते नहीं थे, है ना? यशोदा भियोलुख लिखा है यहाँ पे। तो सत्यव्रत मुनि देखो ये भी बताना चाहते हैं, देखो मैं जब कह रहा था तहकीकात के बारे में, सोचो मतलब क्या एक एक वर्ड सोच सोच के लिखा है यशोदा भियोलुख, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि ये कृष्ण जो है ये दूसरी गोपियों से डरते नहीं थे, है ना? आप लोग को स्टोरी मालूम है ना सब लोगों को, एक वो प्रभावती गोपी की स्टोरी है, उसने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया, बोला चल आज तो मैं तेरी माँ को जाके बताऊंगी कि तू क्या करता है, तू चोरी करता है ना, और मैं जाके यशोदा से कहती हूँ। यशोदा एक्चुअली यशोदा कभी मानती नहीं थी कि मेरा पुत्र चोरी कर सकता है, सभी माओं का ऐसे ही फीलिंग होता है, उनका लगता है मेरा लाला तो राजा बाबू है। तो कृष्ण चोरी करते थे, लेकिन और गोपियां कई बार उल्हाने लेके आती थी उनके पास में। एक्चुअली यशोदा दधि मथने बैठी क्यों, स्वयं दधि, इसीलिए कि उल्हाने सुन सुन के पक गई थी कि इतना गोपियां लोग आके उल्हाने करती थी और कहती थी यशोदा तेरा बेटा जो है चोर है। हाँ, यशोदा चोर वर्ड सुन के कि भाई ऐसा कैसा, मेरा मेरे घर पे कोई माखन की कमी है क्या? 900,000 गाय थी नंद बाबा के पास में, सोचो कितना माखन बनता रहेगा। तो बोले मेरे बेटे को क्या जरूरत है तेरे घर में जाके माखन चुराने की? तो बोलते रहे तू जानती नहीं है यशोदा, ये हमारे घर पे सुबह सुबह आ जाता है और हम जब घर का काम करती है बछड़ों को खोल देता है, बछड़े जाके सारा दूध पी लेते हैं और सारा दूध खत्म हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है, हम तो गालन ठहरी, हमारे को तो दूध की जरूरत है। तो यशोदा ने कहा कि एक काम करो, अगर ऐसा है तो तुम इसको समझाया करो कृष्ण को कि कृष्ण ऐसा मत किया कर, अभी थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा समझेगा। तो बोला अरे हमने ये भी करने की कोशिश की मैया, लेकिन जब हम उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि क्या मैं अपने घर से बछड़े लेके आ रहा हूँ, गाय किसकी? तुम्हारी। बछड़े किसके? तुम्हारे। तुम्हारे बछड़े तुम्हारी गाय का दूध पी रहे, उससे मेरा बल बढ़ रहा है कि उनका बल बढ़ रहा है, और तुम ऐसे बांध के रखती हो क्या? तो बोले ऐसी ऐसी बातें करता है। तो यशोदा कहती है अच्छा कोई बात नहीं, वो जब आता है तो तुम माखन को छुपा के रखा करो ताकि तुम्हारा माखन नहीं खाएगा। तो बोलती हमने ऐसा भी करके देखा मैया, हम माखन को छुपा के रखती है लेकिन ये कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह, उनके बॉडी में से एक आभा निकलती है, और ये जो पद्मनाभ मणि तुमने पहना के रखी है ना, ये उससे ढूंढ लेता है, और इसकी नाक भी बहुत पावरफुल है, सूंघ लेता है किधर है और वहां से माखन ले लेता है। तो कहते अच्छा एक काम करो, माखन को थोड़ा ऊपर बांध के रखो छींके पे। तो बोला मैया हमने ये भी करके देखा, हम माखन को ऊपर बांध के रखती है, ये आता है गोविंदास बना के एक के ऊपर एक चढ़ जाता है और वहां से माखन उतार लेता है और वहां से माखन खा लेता नहीं, हम क्या करें? तो यशोदा कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये जब आता है तो तुम उसको अपने हाथों से माखन दे दिया करो और मैं तुमको गारंटी देती हूँ जितना माखन तुम दोगी चार गुना ज्यादा मैं दूंगी। तो बोलते मैया हमने ये भी करके देखा कि भाई जब आएगा खुद अगर अकेला माखन भी खाएगा तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, बंदरों को खिलाता है, तोड़ फोड़ करता है, कम से कम अपने हाथ से माखन दे देंगे, हमने ये भी प्रयास किया। लेकिन जब ये आता है और माखन लेके खड़ी रहती है और इसको पूछती है काना माखन खाएगा तो बोलता है भिखारी समझ के रखा है, हम क्या भिखारी है, हम ऐसा भीख मांग के माखन नहीं खाते, चोरी करने में पता है कितना पराक्रम करना पड़ता है, कितना मजा आता है। तो बोलते ऐसी बातें करता है मैया, तो हम तो परेशान हो गई है अभी क्या करें। तो यशोदा को ऐसा लगा कि यार बहुत हो गया, मतलब इतना ये उत्पात मचा रहा है, ये सब कुछ कर रहा है करके। और मैया फिर कृष्ण से बोलती है कि यार तेरे घर पे माखन की कमी है क्या, क्यों ऐसा काम करता है, क्यों मेरी नाक कटवाता है सब जगह जाके। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं घर पे बैठ के नहीं खाना चाहता मैं कमा के खाना चाहता हूँ, ये उनके कमाने का स्टाइल है। तो यशोदा परेशान हो गई, बोली कि हो सकता है शायद मेरे नौकर चाकर अच्छा माखन नहीं बनाते हो, इसके लिए निर्ममंतम स्वयं दधी, वो स्वयं बैठी बनाने के लिए कि शायद मेरे नौकर चाकर अच्छा माखन नहीं बना रहे हैं। तो कृष्ण किसी से डरते नहीं थे, गोपियों को तो साइड में लगा देते थे वो, तो प्रभावती गोपी ने पकड़ लिया, बोला चल यशोदा को भी बताऊंगी। तो लेके गए और यशोदा के सामने जाके कृष्ण का हाथ खींच के बोला ये देख तेरा लाला, ये तेरा लाला जो है ये देख इसको रंगे हाथों पकड़ा मैंने, माखन चुरा रहा था। तो यशोदा हंसने लगी देख के, तो बोले अरे हंस क्यों रही है, तूने किसको पकड़ के लेके आई तू? तो उसने प्रभावित ने देखा तो उसका बेटा चंद्रू बोला अरे तू क्या कर रहा है इधर। तो लेके जब वापिस चली गई फिर बाहर गई तो कृष्ण था हाथ के अंदर, कृष्ण का देख मैंने तेरे को बोला था मेरे से पंगा मत ले, इस बार तेरा पुत्र बनाऊ, नेक्स्ट टाइम मेरा हाथ पकड़ाऊ तेरा पति बन के आऊंगा। तो हर गोपी को डराते थे लेकिन यशोदा भीओ लुख, इसके लिए सत्यव्रत मुनि ने बहुत ही ध्यान से ये शब्द लिखा है यशोदा भीओ लुख लाधव मानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वयं दधि, ये यशोदा खुद अपने हाथों से माखन मथने के लिए बैठी और भगवान कृष्ण जो है जो पूरा मूर्तिमान भय को भयभीत करते रहते हैं वो यशोदा से डर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान ने क्या किया, अपना जो ऐश्वर्य है उसका त्याग कर दिया, अपने ईश्वर विशेष तत्व विशेष का त्याग कर दिया, भगवान ने बोला नहीं चाहिए मुझे, यशोदा के लिए ये भी नौछावर है। हमारा एक वर्ष हुआ है प्रभु जी, सात बाकी पता नहीं भगवान तो हम दूसरे पे आएंगे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम करं भोज युग्मेन सांतं च नेत्रं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम करं भोज युग्मेन सांतं च नेत्रं, तो तत्व विशेष की हम बात कर रहे थे नमामि ईश्वरम, तो यहां पर क्या वर्ड आया है रुदंतम, तो हमको कौन सा वर्ड लगाना है ईश्वर, रुदंतम ईश्वरम, नहीं तो हम लोग मात खा जाएंगे कि कोई साधारण बालक रो रहा है, भगवान भी रोते हैं, भगवान को किसने रोते हुए देखा है, कभी नहीं रोते हैं। तो रुदंतम मुहुर नेत्र, और उनके नेत्र क्या हो रहे हैं युग्मम मृजंतम, इन दोनों जो उनके नेत्र है वो उसके अंदर कराम भोज, अपने हाथों से जब वो उसको मल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो काजल यशोदा माँ ने लगा के रखा है वो काजल पूरा फैल रहा है उनके चेहरे पे। और सांतंक नेत्रम, उनके नेत्र कैसे हो रहे हैं, आतंकित हो रहे हैं। अभी आपको एक वर्ड मैं बताता हूं कि संस्कृत बहुत ही विशेष भाषा है और सत्यव्रत मुनि ने एकदम चुन चुन कर ये वर्ड लिखा है, आगे लिखा है यशोदा भियोलुख, यहां पर लिखा है सांतंक नेत्रम। तो बोले डर लगा था, तो एक होता है जिसको बोलते हैं भय, भय मतलब डर, कि डर लग रहा है कि भाई हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सुना कि हमारे गांव में शेर आ गया, तो डर लगता है कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सावधान रहो, सावधान रहो, शेर आ गया। ऐसा डर का एक भय का माहौल पैदा होता है। लेकिन समझो आप गांव में खेत में जा रहे हैं और वो शेर डायरेक्ट आपके सामने आ जाए और उस शेर को उस समय देखकर जो आपके भाव प्रकट होंगे उसको बोलते हैं आतंक। समझ में आ रहा है? तो आतंक मतलब बहुत चरम सीमा है भय की। भय मतलब तुमको थोड़ा भय लग रहा है लेकिन तुम्हारे सामने वो शेर आ गया है, हाँ, तो जान आ गई पूरी एकदम, यू नो। तो वो आतंक, वैसा आतंक हो रहा था कृष्ण के नेत्रों में। सोचो कृष्ण के नेत्रों के बारे में शास्त्रों में क्या क्या नहीं बताया है। ऐसे बताया कि हम जीवन के अंदर पवित्र है या अपवित्र है, भगवान के नेत्रों को अगर याद कर ले तो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यम स्मरेण पुंडरीकाक्षस बाह्याभ्यंतरः सुचिः। पुंडरीकाक्ष भगवान कमल नयन जिसको बोलते हैं, पुंडरीकाक्ष जो भगवान के आंखों के बारे में कितना कुछ कहा गया है, एक्चुअली वो उस आंखों में क्या हो रहा है, आतंक हो रहा है। किससे आतंक हो रहा है? यशोदा माँ के हाथ में वो छड़ी देखकर, एक साधारण से छड़ी जिसको मतलब कोई भी ऐसे तोड़ सकता है, भगवान तो मतलब इतने सारे यूनिवर्स को उठाते रहते हैं। उस छड़ी को देखकर रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रिजंतम कराम भोज युग्मे न सांतंक नेत्र, उनके सांस उनकी बढ़ रही है, आतंक हो रहा है, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो किसी को लगा क्या भगवान ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है, भगवान ओवर एक्टिंग कर रहे हैं क्या, इतना क्या मतलब, यू नो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, अरे वो कारणों के कारण जो नरसिंह वराह के रूप में आते हैं, ये इधर क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि बोल रहे कि नहीं, सनातन गोस्वामी कह रहे कि नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान जो है रसराज है, भगवान का एक नाम क्या है, सभी रसों के मालिक है, सभी रसों के राजा है, इज द मास्टर ऑफ इमोशंस। तो वो इमोशंस अपने प्रकट कर रहे हैं इस लीला के अंदर। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ये याद रहना चाहिए कि इमोशंस प्रकट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति एक तरह का इमोशन प्रकट करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग इमोशंस दूसरे व्यक्ति को प्रकट करना चाहिए, तभी तो आदान प्रदान होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि एक मतलब यू नो, जैसे अगर माँ बच्चे से प्रेम कर रही है और बच्चा अगर प्रेम नहीं कर रहा है तो आदान प्रदान बराबर से होगा नहीं, और अगर माँ डांट रही है और बच्चा हंस रहा है तो क्या असर ही नहीं हो रहा इसके ऊपर, क्या है? तो अगर माँ डांट रही है मतलब क्या होना चाहिए, बच्चा डरना चाहिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर माँ डांट रही है तो बच्चे को डरना चाहिए। अगर माँ डांट रही है और बच्चा हंस रहा है और बात ही नहीं सुन रहा है तो रसा मतलब वो कुछ उसमें मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर यशोदा गुस्से में है, यशोदा कृष्ण को डांट रही है, डांटने वाली है, तो कृष्ण उसका करस्पॉन्डिंग इमोशंस खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट ही इज एक्चुअली वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो रसराज है और वो अपने माँ के प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, यू नो। और कृष्ण कहते हैं गीता में, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। बहुत साल पहले, 10 साल पहले हमने जब एक ड्रामा किया था यहाँ पे कृष्ण बलराम का, मेरे साथ कुछ कुछ डिवोटीज थे उसमें, तो उसके अंदर एक डायलॉग बोलते हैं कृष्ण के, आप अगर हमारे से प्रेम करना चाहो तो हम आपसे प्रेम भी करेंगे, और आप अगर हमसे युद्ध करना चाहो तो हम आपसे युद्ध भी करेंगे। तो भगवान जैसी इच्छा लेके जो भगवान के पास जाता है, भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, यू नो। चाणूर और मुष्टिक भगवान से मल्ल युद्ध करना चाहते थे, भगवान ने उनके साथ युद्ध भी किया। धोबी उनको कपड़ा नहीं देना चाहता था, भगवान ने उसको खत्म कर दिया। माली उनको माला पहनाना चाहता था, भगवान ने उनको प्रेम दिया। कुब्जा उनको चंदन देना चाहती थी, कुब्जा के साथ वैसा आदान प्रदान किया। तो भगवान जो है रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, और उनका रोने का स्टैंडर्ड भी देखो, आतंक नेत्रम, कि उनके नेत्रों में आतंक हो रहा है, इतना डर रहे हैं वो कि मैया छड़ी छोड़ देनी तो मेरा क्या हो जाएगा। मुंह श्वास कंप, उनका मुंह, उनकी श्वास उसमें कंपन हो रहा है। सोचो क्या क्या एक एक वर्ड लिखे उन्होंने, मुंह श्वास कंपन त्रि रेखांक कंठ के, उनके जो कंठ के ऊपर जो त्रि रेखा है एक शंख के जैसा, उस कंठ के अंदर इतना होता है, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, और वो दामोदर जो है उनको केवल भक्ति भक्ति के द्वारा ही बांधा जाता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा सत्यव्रत मुनि ने, भक्ति बद्धम, तो इसका मतलब क्या है कि देखो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज कम टू बिकम ईश्वर। हम लोग सब अपने अपने किसी न किसी यू नो कायनात के ईश्वर बनना चाहते हैं, यू नो कोई अपनी बॉडी का ईश्वर बनना चाहता है, तो कोई अपने घर का ईश्वर बनना चाहता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो सोसाइटी फॉर्म करता है, उस सोसाइटी का ईश्वर बनना चाहता है, कोई उसके और आगे जाएगा तो दूसरा, जो मतलब नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई जो है वो ईश्वर बनना चाहेगा, क्योंकि ये हमारा नेचर है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धाना सिद्धो हम भगवान सुखी, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, ईश्वर बनना चाहता हूँ। सब लोग ईश्वर बनने के लिए आए हैं, तो ये जो सारे ईश्वर ऊपर जो है वो भी भगवान एक्चुअली बताना चाहते हैं कि देखो ध्यान से देखो, आई कैन ओनली बी बाउंड बाय भक्ति। अगर तुम कंट्रोलर बनकर आके मुझे बांधना चाहोगे तो मैं नहीं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन भी कृष्ण को बांधना चाहता था, कौन से एपिसोड में, विच एपिसोड, हाँ महाभारत तो है भाई, पर महाभारत में किधर, जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे तब दुर्योधन उनको बांधना चाहता था, और भगवान ने कहा था कि हमें बांधोगे प्रयास करके देख लो, तो दुर्योधन बांध नहीं सका, बांधने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भगवान ऐसे बंधते नहीं है, भगवान केवल भक्ति के द्वारा बंधते हैं। तो केवल प्रेम भक्ति के रज्जु से ही भगवान को बांधा जा सकता है, नहीं तो ऐसा हम सोचे कि नहीं भगवान किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार से बंध नहीं सकते एक्चुअली। एनीवे, तो जो भक्ति के द्वारा ही भगवान कहते हैं कि देखो अगर तुम कंट्रोलर बनकर मुझे बांधने की कोशिश करोगे, या तो एक फंडा मैं आपको बताता हूँ, प्रिंसिपल बताता हूँ, दैट इफ यू वांट टू कंट्रोल कृष्णा, भक्त लोग कृष्ण को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हु इज कंट्रोलिंग कृष्णा, यशोदा, यशोदा इज कंट्रोलिंग कृष्णा, सो इफ यू वांट टू कंट्रोल कृष्णा डोंट ट्राई टू बिकम ए कंट्रोलर। ओके, आई विल गिव अनदर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा कहूं कि इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर डोंट ट्राई टू बिकम ए डॉक्टर, डज इट मेक सेंस? मटेरियल वर्ल्ड के अंदर अगर मैं ऐसा कहूं कि आपको डॉक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर देन डोंट ट्राई टू बिकम डॉक्टर, और इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर डोंट ट्राई टू बिकम इंजीनियर, तो बोले वो पागल है क्या, कैसी बेहुदा बातें कर रहा है, हा? लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि मटेरियल लाइफ विपरीत है। इफ यू वांट टू कंट्रोल कृष्णा डोंट ट्राई टू बिकम कंट्रोलर, द मोमेंट यू ट्राई टू बिकम कंट्रोलर कृष्णा विल नेवर कम इन योर हैंड, वो स्लिप होके बाहर निकल जाएंगे। तो कृष्ण को अगर कंट्रोल करना है, जैसे हमने क्या कहा कि भक्ति इज आर्ट ऑफ बींग डिफीटेड, भक्ति का मतलब है पराजय, तो ह्यूमिलिटी द प्रिंसिपल द लॉ, एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर अस वर्क्स हाउ, यू बिकम प्राउड यू गो डाउन, यू बिकम हम्बल यू कम अप। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध प्रणाली मंत्र हमको दिया है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि तृण से भी एकदम जो नम्र है, वृक्ष से भी जो ज्यादा सहनशील है, वही व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। तो जो जितना ऊपर जाने की कोशिश करेगा औंधे मुंह गिरेगा, और जो जितना नीचे की पोजीशन लेने की कोशिश करेगा भगवान उसको ऊपर बिठाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझने की जरूरत है कि भगवान जो है वो बंधे जाते हैं तो केवल भक्ति से बंधे जाते हैं और किसी से नहीं। जैसे अभी बहुत सारे योग है, अलग अलग योगों से भगवान को हम बांध नहीं सकते, केवल भक्ति से ही भगवान को बांधा जा सकता है। तो इसके लिए पूर्ण आस्वादन जो है वो सिर्फ भक्ति मार्ग में है। तो मैं ये पॉइंट बोल के आई थिंक हम दो ही वर्ष करेंगे, बाकी के छह वर्ष भगवान की कृपा के लिए छोड़ देंगे। अगर बहुरूप प्रभु और सिद्ध गौरांग प्रभु कृपावान हुए तो हम इसको आगे, खैर नेक्स्ट वीक तो हमारे पास स्पेशल स्पीकर रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कोशिश करेंगे कि छह वर्ष भी हम कवर करने की कोशिश करें। तो आस्वादन जो है पूर्ण आस्वादन वो केवल भक्ति मार्ग में है। जैसे दूसरे मार्ग जो है कर्म ज्ञान वगैरह वो सब कैसे हैं कि जैसे समझो एक समोसा है, तो समोसे को देखना, उसको छूना, उसकी सुगंध लेना। जैसे भी हम बाहर खड़े थे और बाहर एकदम अच्छा अच्छा सुगंध आ रहा था हमारे को क्या क्या भक्त लोग बना के लाए हैं, तो मैं बाहर खड़ा था, मैं बोला क्या कौन सा स्मेल आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो सूंघना भी एक अनुभव है कि नहीं, देखना अनुभव है, देखना अनुभव है, स्पर्श करना अनुभव है, सूंघना अनुभव है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग अगर समझो, अभी आप सब तो भक्त हैं, लेकिन समझो अगर होटल में कोई जाता है और जाके समोसे को देखता है या हाथ लगाता है कि गर्म है कि नहीं, कई बार हम ऐसे ना समोसा खरीदने के पहले छूता है व्यक्ति उसको, या रसगुल्ला है दिखता है नरम है कि नहीं। रसगुल्ला का नाम सुनते ही यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज के बहुत अच्छी हंसी आती है, एकदम चेहरा भी रसगुल्ला जैसा ही हो जाता है। तो तो समोसा को टच किया है आपने, तो जैसे आप जाते हो देखते हो समोसे को टच करते हो, या वैसे तो होटल अलाउ नहीं करता है, लेकिन आपने अगर सूंघ लिया तो आपको बिल बना के देगा क्या, प्रभु जी 2 दिरहम समोसा सूंघा उसका, क्या समझो आप समोसा खा रहे हो समझो और बाजू में वो वेटर पिज्जा लेके जा रहा है और क्या सुगंध आ रही है उस पिज्जा की, और जब आप काउंटर पे पैसा देने के जाते हो तो 5 रुपए समोसे के लेकिन वो 7 रुपए लगा के देता है आपको, कहता 2 रुपए तुमने समोसा सूंघा। ऐसा कोई करता है होटलियर? नहीं। पर हमने अभी कहा कि समोसा सूंघना भी अनुभव है, देखना भी अनुभव है, स्पर्श करना भी अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को होटल वाले अनुभव नहीं मानते, अगर मानते तो बिल में ऐड करते हैं। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हाँ, ये ऐड करते हैं, उसको अनुभव नहीं मानते हैं, केवल आस्वादन का पैसा लगता है। आप जब उस समोसे को लेके खाओगे, पूर्ण रूप से खाओगे, तब आपको वो चार्ज करता है, तब पैसा लगा के देता है आपको। तो ये जो दूसरे जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये कैसे हैं? समोसों को देखना, सूंघना, स्पर्श करना, केवल भक्ति योग ही समोसों का आस्वादन कराता है। केवल भक्ति योग है जो रसगुल्ले को अंदर लेके उसका आस्वादन कराता है, बोलता है कि वाह खाओ, और पूर्ण आस्वादन भगवान का। नहीं तो क्या होता है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये ब्रह्म परमात्मा के लेवल तक आनंद नहीं आता है। आनंद कहां पे आता है? यहां पर भक्ति मार्ग में आनंद आता है, और वो भगवान आनंद देने के लिए आए हैं। और ये दामोदर लीला भगवान के आनंद का एडवर्टीजमेंट है, आख्या पयन तमाम, आगे के वर्सेस में देखेंगे, वो उनका एडवर्टीजमेंट है। यहां पर भगवान आके कह रहे हैं कि देखो मेरी इस लीला को देखो और इस लीला का आस्वादन करो। तो भगवान अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और भक्त लोग उनसे एक और स्टेप आगे हैं, वो और आगे जा जाके और आस्वादन करते हैं। एनीवे हमारा समय की मर्यादा है, खत्म हो रहा है, 1 घंटे में हम खाली 2 वर्ष ले पाए हैं। तो अगर मौका मिलेगा, भगवान की कृपा हुई, तो इस 6 वर्ष को हम और इस तरह से डिटेल में तहकीकात करते हुए, डिटेक्टिव बनते हुए, जो हमारे आचार्य ने बताया है उसको आगे आगे जाके हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग बिना तंजूसी किए आप अपना आशीर्वाद और प्रार्थनाएं मेरे लिए कीजिए कि मुझे भी भक्ति में से कुछ जो ड्रॉप्स है वो प्राप्त हो सके और भगवान की हम भक्ति और सेवा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर हम इसको विराम देंगे। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे। तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम करेंगे और हाँ एक सेकंड वो एक्चुअली लास्ट वाले पार्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन पता नहीं हमारा क्लास होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और हम दामोदर अष्टकम गाएंगे। इफ यू आर ऑल ओके, कैन आई रिक्वेस्ट किशोरी टू सिंग दामोदर अष्टकम, यू कैन सिंग। अच्छा, ये मैं एक राधा रानी वाला पार्ट बता देता हूँ, प्रभु जी ने ये याद रखा है। सो बेसिकली जब यशोदा मैया कृष्ण को, एक मिनट, जब यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही थी तो सुबह बांधना शुरू किया था, शाम हो गई। तो ये बहुत डिटेल में अगर हमको मौका मिलेगा, अरे छोड़ो ना बाद में ले लेना, तो डिटेल में जब हम जाएंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे। तो बहुत टाइम लग गया, तो एक रस्सी बांधी तो क्या हुई, 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर दूसरी रस्सी बांधने का प्रयास किया, फिर दो अंगुल छोटी पड़ गई। ऐसे कितनी सारी उन्होंने रस्सी ली, एक रौप्य महोत्सव वहां शुरू हो गया और हर रस्सी जो है दो अंगुल छोटी पड़ती थी। गोपियां अपने घर से लाला के रस्सी दे रही थी और कृष्ण बंधे नहीं जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण इंतजार कर रहे थे। ही वॉज वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड ही वॉज वेटिंग फॉर राधा रानी। तो जब राधा रानी आई तो सारी रस्सियां खत्म हो गई, कुछ नहीं था। तो राधा रानी के बाल में रिबिन था, फीता था। तो राधा रानी ने सोचा मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देती हूँ इस काना को बांधने के लिए। तो उसने अपने बाल में से अपना रिबिन निकाला, फीता निकाला, और वो यशोदा मैया, एक्चुअली यशोदा मैया मांग रही थी कि दे दे तेरा फीता दे, और उसको शर्म आ रही थी कि भाई मैं अपने बाल में से निकाल के कैसे दूं। और कृष्ण उधर से इशारा कर रहे थे, कह रहे दे दे दे। और राधा डर रही थी, तो डर के राधा ने अपना फीता दिया। और उस फीता को, उस रिबिन को जब यशोदा मैया ने उस रस्सी से बांधा तो भगवान दामोदर बंद गए। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, जय श्रीमती राधा रानी की। तो ये राधा रानी का स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये जो है डेजर्ट है, यू नो, ये राधा रानी ने, ये जो सनातन गोस्वामी सत्यव्रत मुनि ने प्रेजेंट किया है, लास्ट वर्स जो है के, यू नो, जहां पे वो लीला के बारे में और राधा रानी के बारे में बताते हैं, तो हम लोग फिर इसको जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
Thank you.